आज है 17 अप्रैल दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। मालेगांव मस्जिद बम कांड की अभियुक्त प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा।
भगवा आतंकवाद कहा, हिंदू आतंकवाद कहा, ये सब विषय ऐसे हैं, मेरे हैं, मेरे का मतलब है ये देश के विषय है।
योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या तो राहुल गांधी ने केरल में धोती पहनकर मंदिर यात्रा की। सऊदी अरब में दो भारतीय नागरिकों का सिर कलम किया गया, उनमें से एक की पत्नी ने बीबीसी से बात की।
तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हैं, 4 भी हो गए, फिर हमारे गांव का लड़का था उसने बताया।
इसके अलावा होंगी खेल जगत की खबरें भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधु वासिनी से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने भोपाल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा है। वो आज ही बीजेपी में शामिल हुई थी। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट मामले में अभियुक्त हैं और 9 साल जेल में रही हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। पिछले 2 दिनों में भारत के कई राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौतें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हुई हैं। तूफान और बिजली से घरों और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इंडोनेशिया में आज राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव एक साथ संपन्न हुए। एग्जिट पोल्स के मुताबिक मौजूदा राष्ट्रपति जोको विडोडो अपने प्रतिद्वंद्वी और पूर्व जनरल प्राबोवो सुब्रियांटो से आगे चल रहे हैं। विडोडो ने पोल्स के नतीजों का स्वागत किया है। चुनाव के आधिकारिक नतीजे मई में आएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली में कल रात हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त लीबियाई सरकार का कहना है कि हमला जनरल खलीफा हफ्तार के समर्थन वाली सेना ने किया है। लीबिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर जफर हुसैन ने बीबीसी से बताया कि वहां लोगों की स्थिति बेहद खतरनाक और अनिश्चितपूर्ण है। यहां पूरी रात भयंकर संघर्ष और विस्फोट की आवाजें सुनी गई। पिछले 11 दिनों में यहां 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लीबियाई नागरिक हिंसा से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। वो त्रिपोली के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन डर इस बात का है कि हमलावर हर मोर्चे पर सक्रिय हैं। लीबिया में WHO प्रमुख जफर हुसैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने वादा किया है कि नोटरडाम गिरजाघर को बनाने के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि सारा खर्च बिल्कुल पारदर्शी होगा और एक एक पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नोटरडाम के लिए ही इस्तेमाल होगा।
Chaque euro versé pour la reconstruction de Notre-Dame servira à cela, pas à autre chose.
आपका दिया एक एक यूरो सिर्फ नोटरडाम के निर्माण में लगेगा, किसी और चीज में नहीं। जो भी फ्रेंच नागरिक इसके लिए पैसे देगा उसे आयकर में 67% से 75% तक की छूट मिलेगी। ये थे फ्रांस के प्रधानमंत्री फिलिप एडवर्ड। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश की अभिनेत्री और मॉडल सफा कबीर ने कहा है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती। उन्होंने ये बात एक रेडियो इंटरव्यू में कही, लेकिन उनका एक वीडियो क्लिप बांग्लादेश के सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं पुनर्जन्म में यकीन नहीं करती, मैं उस किसी चीज़ में यकीन नहीं करती जिसे मैं देख नहीं सकती। सफा कबीर के इस बयान पर बांग्लादेश में जमकर विवाद हुआ और लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। हालांकि उनकी माफ़ी से ये विवाद थमा नहीं बल्कि और बढ़ गया। लोग उन्हें भला बुरा कह रहे हैं और गालियाँ तक दे रहे हैं। उड़ीसा में कंधमाल जिले के फूलबनी में माओवादियों ने चुनाव आयोग की टीम पर हमला कर दिया है। हमले में टीम की पर्यवेक्षक संजुक्ता दिगल की मौत हो गई है। माओवादियों ने उनके सिर पर गोली मारी थी। कंधमाल जिले के फिरंगिया में माओवादियों ने निर्वाचन आयोग की टीम का एक वाहन भी जला दिया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। भारतीय जनता पार्टी ने विवादास्पद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। प्रज्ञा ठाकुर को पुलिस ने 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव की एक मस्जिद में बम विस्फोट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस विस्फोट में 7 लोग मारे गए थे, पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से विरोध न किए जाने पर साध्वी प्रज्ञा को 2017 में जमानत मिल गई। प्रज्ञा ठाकुर पर आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी की हत्या और समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप भी था, पर उन्होंने इसे अपने खिलाफ कांग्रेस सरकार की साजिश का परिणाम बताया था। अब वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। सुनिए भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
प्रज्ञा ठाकुर ने आज सुबह ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। नाम घोषित होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह उनके लिए किसी भी तरह से चुनौती नहीं है।
मेरे सामने तो कोई चुनौती नहीं है वो, और देशभक्ति जो होती है उसके सामने दुश्मन की हिम्मत नहीं होती चुनौती देने की, और वो चुनौती मैं मानती ही नहीं हूँ इसको, और है भी नहीं। मेरा तो विषय सिर्फ राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है, और जो उसने भगवा आतंकवाद कहा, हिंदू आतंकवाद कहा, ये सब विषय ऐसे ही मेरे हैं। मेरे का मतलब है ये देश के विषय है।
हालांकि दिग्विजय सिंह पिछले कुछ दिनों से अपने आप को एक अच्छा हिंदू साबित करने की कोशिश में लगे हैं। दिग्विजय सिंह ने टिकट मिलने के बाद शहर के तमाम मंदिरों का दौरा किया है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा इसे ढोंग बता रही हैं।
वो व्यक्ति गलत है, और मैं देश के प्रति मेरा समर्पण है, इसलिए उसको ये एहसास मैं कराऊंगी कि तुम जो भी राजनीति में अभी तक राजनीतिक स्वार्थवश तुमने जो भी देश को हानि पहुंचाई है, ये तो उसको एहसास कराना भर अगर उसमें जरा भी नैतिकता होगी तो वो खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा।
वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा के साध्वी प्रज्ञा को सामने ला देने की वजह से चुनाव अब पूरी तरह से धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा। गिरजा शंकर कहते हैं,
दिग्विजय सिंह को एक तरफ बीजेपी जो है वो हिंदू विरोधी नेता के रूप में प्रोजेक्ट करती रही, और लगातार उसका प्रतिरोध दिग्विजय सिंह करते रहे कि नहीं, मैं हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, है ना। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जब मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, हिंदूवादी हूँ, तो संघ मेरा विरोध क्यों कर। तो उनके जो हिंदूवादी जो बनने का दावा था, जो उस पर चोट किया है बीजेपी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लाकर।
माना जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा की वजह से भोपाल में ध्रुवीकरण भी होगा और उसका असर दूसरी सीटों पर भी देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि प्रज्ञा ठाकुर वो भाजपा की प्रत्याशी हैं जिन्हें आरएसएस के प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में शिवराज सरकार द्वारा 2 बार गिरफ्तार किया गया। संघ के प्रचारक रहे सुनील जोशी की हत्या 29 दिसंबर 2007 को देवास में गोली मारकर कर दी गई थी। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर को 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 2009 में खात्मा लगा दिया गया, लेकिन 9 जुलाई 2010 को इस मामले की पड़ताल फिर शुरू की गई और उन्हें 26 फरवरी 2011 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1 फरवरी 2017 को देवास की अदालत ने उन्हें दूसरे लोगों के साथ बरी कर दिया। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यूं तो चुनाव प्रचार के लिए पाबंदी लगी है, लेकिन वो मंदिरों की यात्रा करके या हनुमान चालीसा का पाठ करके खबरों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर में बने अस्थाई रामलला मंदिर गए और एक दलित परिवार के साथ भोजन भी किया। चुनाव आयोग ने भले ही योगी पर चुनाव प्रचार की पाबंदी लगा रखी है, मगर अपनी धर्म यात्राओं के मार्फत वो पर्याप्त राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
भड़काऊ भाषण के आरोप में चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ पर 3 दिन तक चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध मंगलवार से शुरू हुआ और योगी आदित्यनाथ मंगलवार से ही धर्म यात्रा पर निकल पड़े। मंगलवार की शाम उन्होंने लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की तो सुबह अयोध्या का रुख किया। अयोध्या में मंदिरों में पूजा अर्चना के अलावा उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की। इसी क्रम में वो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मिलने गए। नृत्य गोपाल दास का कहना था,
अयोध्या जी कोई दर्शन करने आ रहा है तो उसके लिए किसी को रोका नहीं जा सकता। हाँ, कहीं भी जाकर के चुनाव की बातें करें तो बात वो नहीं कही जानी चाहिए, क्योंकि समय चुनाव आयोग ने निषेध कर दिया है।
अयोध्या का एक दिन का ये दौरा योगी का निजी दौरा था। राजनीतिक कार्यक्रम या चुनावी प्रचार में जा नहीं सकते थे, लेकिन आम लोगों से मिलने में उन्होंने कोई कोताही नहीं की। अयोध्या में एक दलित परिवार के यहाँ भी पहुँचे और उन्हीं के घर भोजन भी किया। जाहिर है परिवार के लोग बेहद खुश थे।
जो उम्मीद था मतलब हमको घर मिला, रहने का वतन नहीं था हमारे पास, वो वतन मिला, बस उसी खुशी के हम उसका आरती उतारने चाहते हैं। हमको कमरा बनवाए हैं, सब सफाई अब सुना रहा है यहाँ वहाँ सब।
अभी तो फिलहाल सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, घर दे दिया, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं फ्री का, और क्या चाहिए।
चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं पर कुछ दिनों के लिए चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसा इनके आपत्तिजनक बयानों और भाषणों की वजह से हुआ है। हालांकि आयोग की इस कार्रवाई के बावजूद ऐसे बयानों में कोई कमी नहीं आई है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर अली और बजरंगबली संबंधी बयान की वजह से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन अयोध्या में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी की माने तो प्रतिबंध के बावजूद योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे से वो संदेश दे गए जो वो देना चाहते थे।
क्योंकि बजरंगबली पर बयानबाजी के आरोप लगा था, इसलिए बजरंगबली के दरबार में और रामलला के दरबार में और तमाम संतों महंतों के पास जाके उनसे आशीर्वाद लेकर के ये बताने की कोशिश की है कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने बजरंग बली का नाम लेकर कोई अपराध नहीं किया है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नित गोपाल दास से, जो राम मंदिर आंदोलन के नायक हैं, उनसे मुलाकात किया, उनसे आशीर्वाद लिया। दिगंबर अखाड़े में महंत सुरेश दास जी से मुलाकात किया। तो उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग चाहे जितनी इनसे रोक लगाए, लेकिन उन्होंने मौन रह करके भी वो राजनीतिक संदेश देने में सफल हो गए।
बहरहाल अयोध्या यात्रा के बाद योगी आदित्यनाथ बलरामपुर स्थित देवीपाटन धाम पहुंच गए हैं। उनके प्रतिबंध की मियाद कल तक है, उसके बाद वो चुनाव प्रचार में फिर उतरेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि आयोग की इस कार्रवाई के बाद उनके तेवरों में नरमी आती है या फिर उनके निशाने पर विरोधियों के अलावा चुनाव आयोग भी रहता है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और आइए उत्तर प्रदेश के बाद चलते हैं केरल, जहां वायनाड में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वोटरों से वादा किया कि वो सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं आए हैं बल्कि जनता से जीवन भर का संबंध बनाना चाहते हैं। आज वो इस क्षेत्र के एक मंदिर तक पैदल गए और उस जगह पर भी गए जहां उन्होंने कई बरस पहले अपने पिता की अस्थियां विसर्जित की थी। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
केरला के वायनाड में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण के बीच बीच में लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। हालांकि राहुल ने छोटा सा ही भाषण दिया, पर उन्होंने स्थानीय लोगों की भाषा, संस्कृति आदि का जिक्र करके सीधा संवाद बनाने की कोशिश की। लेकिन सबसे ज्यादा जोश तब दिखने को मिला जब राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा,
Because I respect your intelligence and I don't want to have a relationship of a couple of months with you. I want to have a lifelong relationship with you.
हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम आपकी बुद्धिमत्ता की इज्जत करते हैं। हम यहाँ सिर्फ चंद महीनों का रिश्ता बनाने नहीं आए हैं, हम जीवन भर का रिश्ता बनाने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे वायनाड के बहन हमें भाई मानकर चलें और उनके माता पिता हमें उनका बेटा मानकर चलें। ये रिश्ते तभी बढ़ेंगे जब सच्चाई हो, झूठ नहीं। ये थे राहुल गांधी के शब्द। राहुल गांधी ने लोगों के समस्याओं के बारे में कहा कि वो चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जरूर ध्यान देंगे और रात के ट्रैफिक पर रोक लगाने के बारे में भी काम करेंगे। राहुल गांधी ने आसपास के कई क्षेत्रों में भी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया, लेकिन आज सुबह वो तिरुनेली मंदिर गए जहां वो धोती पहनकर 700 मीटर पथरीली रास्ते से उस जगह गए जहां उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की अस्थियों को 1991 में विसर्जित किया था। AICC सचिव PC विश्वनाथ उनके साथ थे और उन्होंने BBC को बताया, उन्होंने अपने पिता और दादी के लिए प्रार्थना की और पुलवामा के आतंकी हमले के शहीदों के लिए भी पूजा किया। ये थे PC विश्वनाथ के शब्द। केरला में आज राहुल गांधी का दूसरे दिन का दौरा था और आज भी उन्होंने वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, जैसे कि उन्होंने नामांतरण पत्र दाखिल करने के दिन कहा था। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि मोदी देश में एक संस्कृति लाने का प्रयास कर रहे हैं जब देश बहुसंस्कृतिक है। केरला में 23 अप्रैल को चुनाव होना है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। चुनाव चर्चा जारी है। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए स्टूडियो में आ चुकी है BBC संवाददाता दिव्या आर्य, जो इन दिनों दिन भर की चुनावी हलचलों पर नजर रखे हुए मेरे सामने बैठी हुई हैं। दिव्या, अभी आपने सुना कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर पिछड़ी जातियों पर टीका टिप्पणी करने का आरोप लगाया है, क्या जानकारी आपके पास है?
बिल्कुल राजेश जी, महाराष्ट्र के माढ़ा लोकसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कहा गया वो जुमला चौकीदार चोर है, आपको याद होगा
जी,
वो नहीं चला क्योंकि सब चौकीदार उठकर खड़े हो गए, तो अब उन्होंने एक नया पैंतरा आजमाया है। मोदी ने कहा,
कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है।
प्रधानमंत्री का कहना था कि विपक्ष अब पूरे पिछड़े समुदाय को चोर बताने में, गाली देने में जुट गया है, और इससे पहले छत्तीसगढ़ के भाटापारा में भी उन्होंने ऐसी राजनीति की निंदा की थी और कहा था कि कुछ तालियों के लिए इस तरह की बात कही जा रही है।
अपने चिरपरिचित अंदाज में नरेंद्र मोदी ये सब बातें कह रहे हैं।
बिल्कुल, पर दरअसल राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग के बारे में क्या कहा था ये भी आप जान लें। नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, मेरे पास एक सवाल है, सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों है, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, ना जाने अभी कितने और मोदी सामने आएंगे।
तो पिछड़ों के बारे में नहीं बल्कि मोदी जो विवाद चल रहा है उसके बारे में राहुल गांधी ने कहा। दुर्भाग्यवश हम ये आवाज़ अपने श्रोताओं को नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन दिव्या मैं आपके पास एक और सवाल लेके आता हूँ कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इनकम टैक्स की बहुत छापेमारी चल रही है, छापे कई बार मुझे लगता है कि कल भी हुआ है, उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है?
बिल्कुल, तमिलनाडु में कल चुनाव है जैसा कि हम जानते ही हैं, दूसरे फेज में, और वेल्लोर जो सीट है वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे क्योंकि वहाँ से बहुत सारा कैश बरामद हुआ। उसी तरह ये रेड्स कल रात भी हुई, दिन में भी हुई, आज अर्ली मॉर्निंग तड़के तक होती रहीं, और आयकर विभाग के मुताबिक AMMK अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के दफ्तर से करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। उनके मुताबिक उन्हें जानकारी मिली थी कि ये धनराशि वोटरों को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हालांकि AMMK ने उसके बाद एक प्रेसवार्ता करके कहा कि ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें सत्ता पक्ष की तरफ से पैसे बांटे जा रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई करेगा, पर चुनाव आयोग ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है।
दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
हमारे श्रोताओं के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना, 19 अप्रैल से नमस्कार भारत यानी सुबह का कार्यक्रम 9410 किलोहर्ट्ज़ की बजाय 9890 किलोहर्ट्ज़ पर सुना जा सकेगा। ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी और अब जिक्र करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय विषय का। फ्रांस सरकार ने पेरिस के मशहूर नोत्रदेम कैथीड्रल का पुनर्निर्माण 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स के पहले पूरा करवाने का संकल्प लिया है। ये मध्यकालीन इमारत ईसाई समुदाय ही नहीं बल्कि दुनिया भर की धरोहर मानी जाती है। सोमवार को इस गिरजाघर में आग लगने की खबर को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कवर किया। मैंने आज लंदन में BBC संवाददाता गगन सबरवाल से संपर्क किया और पूछा कि इस ऐतिहासिक गिरजाघर के पुनर्निर्माण के लिए फ्रांसीसी सरकार क्या कर रही है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि जो भी पैसे डोनेट करेगा इन द रीबिल्डिंग ऑफ द नोट्रडेम कैथीड्रल, उन सबको उन्होंने टैक्स ब्रेक्स का प्रॉमिस किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि हर एक यूरो जो लोग देंगे इस रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए वो सिर्फ कैथीड्रल के रेस्टोरेशन वर्क के लिए यूज़ किया जाएगा एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। उसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वो रखने वाले हैं, जो स्पायर जो जल गया था, जो कोलैप्स हो गया था, जो चर्च का,
यानी चर्च के ऊपर जो वो शंकुआकार एक बहुत ऊंची सी मीनार टाइप की होती, वो जल गई थी, हमने सब ने वीडियो देखा था,
उसको रीडिजाइन करने के लिए एक इंटरनेशनल कंपटीशन का ऐलान किया है। और उन्होंने बोला कि फ्रेंच कैबिनेट अपना पूरा कैबिनेट मीटिंग सिर्फ द रीबिल्डिंग ऑफ द कैथीड्रल के ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ भी बिजनेस डिस्कशंस नहीं होगा। कल शाम को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक स्पीच में कहा कि वो चाहते हैं कि ये रेस्टोरेशन वर्क 5 years में कंप्लीट हो जाए जस्ट इन टाइम फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। उन्होंने ये भी बोला है कि जो नया कैथीड्रल बनेगा वो पुराने कैथीड्रल से बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल होगा।
लेकिन क्या अभी ये पता चला है कि आग लगी कैसे, इसके बारे में कोई कहीं चर्चा हो रही है?
अभी तो लोगों का ये कहना है कि ये आर्सन अटैक नहीं था बल्कि एक एक्सीडेंट था और 50 इन्वेस्टिगेटर्स अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे टू फाइंड आउट एग्जैक्टली आग कैसे लगी। लेकिन इतना कहा गया है कि ये सैडली एक एक्सीडेंट था, ना कि किसी ने जानबूझ के आग डाला या शुरू किया।
अच्छा, तो जो सरकार इसको फिर से बनाने की कोशिश कर रही है वो काम कैसे होगा, उसके बारे में कोई बातचीत चल रही है?
अभी जैसे कि मैंने बोला कि फ्रेंच प्रेसिडेंट चाहते कि ये 5 साल में पूरा हो, लेकिन ज़्यादा बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है रेस्टोरेशन ऐसे बिल्डिंग के लिए, तो 5 साल तो बहुत कम है, ये सालों साल लग सकते हैं। लेकिन इसके अलावा BBC ने जॉन डेविड से बात की। नाउ जॉन डेविड एक मास्टर स्टोन मेसन है जो कि 1984 में एक सिमिलर इंसिडेंट यूके में हुआ था, यूके के यॉर्क मिंस्टर कैथीड्रल में आग लगी थी। तो जॉन और उसकी टीम इस रेस्टोरेशन में इन्वॉल्व थे और जॉन ने बोला कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगर उन्होंने यॉर्क मिंस्टर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया तो नॉट्रडेम को भी हम कर सकते हैं। नाउ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे आम जनता ने जैसे ये फायर हुआ इतने लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब तक कॉम्बिनेशन अमाउंट है 692 million pounds, विच इज रफली 800 million euro।
लंदन में BBC संवाददाता गगन सभरवाल। सऊदी अरब की एक जेल में 2 भारतीय कैदियों को उनका सर कलम करके सजाए मौत दे दी गई है। पंजाब के सतविंदर सिंह और हरजीत सिंह को 28 फरवरी को यह सजा दी गई। उन पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप था। विदेश मंत्रालय ने सतविंदर और हरजीत के परिवार वालों को यह जानकारी दी है। सतविंदर का परिवार होशियारपुर जिले के दसुआ के पास एक गांव में रहता है, जबकि हरजीत का परिवार लुधियाना जिले में रहता है। दोनों को दिसंबर 2015 में एक दूसरे भारतीय नागरिक आरिफ इमामुद्दीन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। BBC पंजाबी सेवा के अरविंद छाबड़ा ने इस मामले में उनके वकील विनोद कुमार से बात की और पूछा कि जब ये परिवार आपके पास आया तो आपने उन्हें क्या सलाह दी?
मैंने उनको बोला कि ट्वीट करो, madad.com है और कुछ है, 2-4 बातें इनको। फिर मैंने 2-3 मेल आईडी दी उनके दिल्ली की ऑफिस की कि उनको मेल भी कर दो। इन्होंने की मेल
जी,
उसके बाद भी कोई मतलब ऐसी कोई खबर ही नहीं आई। वो यही मान के चल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा गलत कर। इन द मीन टाइम जो बंदा फोन करता था अननोन कॉल अंदर से, उस बंदे ने फिर फोन किया अंदर से, बार बार फोन कर रहा था वो बंदा कि आप मेरी बात का यकीन करो, आपके बंदे की डेथ हो चुकी है।
ये बंदा कौन था जो फोन कर रहा था?
ये बंदा इंडियन ही था कोई
जी,
कोई उसका फ्रेंड था अंदर जेल में, बन गया होगा फ्रेंड अंदर। वो बोल रहा था कि उसकी कुछ निशानियां मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो बंदा मार दिया गया था। एक बंदा आपका और एक लुधियाना का खन्ने का अपना जो हरजीत है, ये दोनों को मार दिया गया है, आप विश्वास करो मेरा।
तो आपने जो हाईकोर्ट में जो ये रिट फाइल की, थोड़ा ये बताएंगे क्या आपने फाइल की और क्या हुआ वहां पर?
तो हाई कोर्ट में जब मैंने डाल ली तो उसमें ये था, इसका मजमून द्वारा ये था कि इस बंदे का, इसका ये पासपोर्ट नंबर है सतविंदर, जो एक बंदा हो रहा है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ लुधियाने का, इस बंदे का वेयर अबाउट्स पता किया, डायरेक्शन की जाए इस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को, इस बंदे का पता चला जाए कि ये बंदा है, जिंदा है, कहाँ पे है, इसकी क्या हालत है, क्या स्टेटस है इस बंदे का। फिर मानियो हाई कोर्ट ने अपने पंजाब ने हरियाणा हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी एक हफ्ते की
जी,
इनको एक हफ्ते में पूरा क्लियर करके इनके वेयर अबाउट्स पता करके बताओ कि ये बंदा जिंदा है, ये सारा पता करके इनको बताया जाए। तो फिर कल अपने पिछले अभी जो मंडे गया है, इस मंडे को मेरे को फोन आया अपने वकील साहब जो है सेंटर के, यूनियन ऑफ इंडिया के, उन्होंने मेरे को बताया कि हमने मेल कर दी है।
तो इसमें जो मेल में उन्होंने क्या लिखा?
उन्होंने मेल में ये लिखा है, हाँ उन्होंने लिखा है कि ये बंदे जेल में बंद थे अपने यही सऊदी अरब में, इनपे केस जो चल रहा था वो था कि वहाँ बैन है शायद अरब कंट्री में, कोई लीकोर का केस चल रहा था, कोई दारू दूर पी होगी इन्होंने या कुछ किया होगा ऐसा ना
जी जी,
उस केस के रिगार्डिंग ये जेल में बंद थे
जी।
उसको डिपोर्ट करने के लिए इंडियन वापस इंडियन एम्बेसी को सरेंडर करने के लिए इसको वापस भेज रहा था, भेजा जा रहा था 2016 की बात है
जी।
इन द मीन टाइम जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट था ना इसको भेजने का नहीं वापस
जी,
तो उन्होंने उस पर एक और एडिशनल चार्ज चला के मर्डर का भी साथ में ये करके उनको फिर दूसरी जगह कोई जेल है रियाद जेल उसी जगह शिफ्ट कर दिया, फिर केस चला दिया।
तो उसमें ये बताया गया कि इनकी इनको जो बीहेड कर दिया गया, लेकिन ये बताइए कि अब इनकी बॉडीज को लेके क्या इसको लेके भी कुछ मुश्किल आ रही है
सर? इसलिए बॉडी के लिए मुश्किल आ रही है, बॉडी के लिए कुछ भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये अरब कंट्री है। इवन जन चाहिए तो इंडियन एम्बेसी को चाहिए कि वो इसका कुछ बताएं, उनकी कोई है ना एशेस वगैरह हो जो बाहर, वो क्या क्रिमेट कैसे करते हैं उनको है ना, जिसकी बॉडी रखी हुई है या किसी मोर्चरी में है ना
जी,
या वो वापस करवाते हैं, ऐसा तो कुछ अनसर्टेन ही है अभी तक, मिलेगी बॉडी उनको या नहीं मिलेगी। इवन देन के डेथ सर्टिफिकेट तक भी उन्होंने कोई इशू नहीं किया, तो सिर्फ उन्होंने कन्फर्म किया कि डेथ हो गई है उनको, डिहाइड्रेट कर दिया गया उनको।
ये थे परिवार के वकील विनोद कुमार, और जैसा कि आपने सुना दोनों मृत व्यक्तियों के परिवार वालों को उनके शव अब तक नहीं सौंपे गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक इन परिस्थितियों में मौत की सजा पाए व्यक्तियों के शव उनके परिजनों को सौंपने का प्रावधान नहीं है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मैंने पंजाब के दसवां गांव में सतविंदर सिंह की पत्नी सीमा देवी से फोन पर संपर्क किया, हालांकि वो बात करने की स्थिति में नहीं थी, फिर भी मैंने पूछा कि आपके पति सऊदी अरब क्या करने गए थे।
ड्राइवरी
करने, उसके बाद चिट्ठियाँ फोन कुछ आता था उनका?
हाँ जी आता, 2 साल आता रहा।
तो आपको पता कैसे चला कि वो कहाँ है, कैसे कोशिश की आपने?
फोन ही बंद हो गया ना मुझे आने, तो फिर मैंने वैसे 2-3 महीने हो गए फोन नहीं आया, 4 भी हो गए। फिर हमारे गाँव का लड़का था उसने बताया तो भी सऊदी रह के ऐसे ऐसे वो अंदर हो गया है।
तो सीमा रानी जी इस वक्त आपके साथ कौन कौन है, कितने बच्चे हैं जी?
बेटी है, बेटा है
13 साल की। जब उसे पता चला कि उसके पिताजी अब नहीं रहे तो वो कुछ आपसे कहती है, बात करती है?
और नहीं बात करती है, मेरे पापा आने के बाद सब झूठ बोलते हैं, ऐसे कहती रहती
है। आपका सहारा कौन है अब?
क्या सहारा नहीं है, परमात्मा ही हमारा सहारा भैया।
आपको सरकार से भी कोई चिट्ठी मिली है क्या?
नहीं, हमको सरकार बोलो कोई नहीं मिला,
भारत सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी कोई ईमेल कोई सूचना नहीं?
नहीं, आपको लड़का ने बताया था, फिर हमने खुद ईमेल मंगाई थी वहाँ से, देर से बैंक से फोन किया, आज खुद बुलाई मंगाई थी उधरों, हमें कोई रिपोर्ट नहीं आई हमें।
अच्छा, और यहाँ जो अधिकारी हैं सरकारी अफसर हैं वो कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं?
कुछ भी नहीं बता रहे, उसने कुछ किया नहीं तो हमें क्या बताएंगे।
सऊदी अरब में सर कलम कर दिए गए सतविंदर सिंह की पत्नी सीमा देवी, जिनसे टेलीफोन पर मैंने बात की, उनकी आवाज़ में थोड़ी सी आपको सुनने में मुश्किल हुई होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। खेल समाचारों के लिए आदेश कुमार गुप्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। आईपीएल की खबर है और क्या क्या है आपके खजाने में?
जी, अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की तो आईपीएल के मुकाबले तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप शुरू हो रही है आज से बैंकॉक में, एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, जरा पहले उसका जिक्र कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार है जब महिला और पुरुष एकल वर्ग में दोनों मुकाबले एक साथ शुरू होंगे, भारतीय उम्मीदें रहेंगी शिव थापा पर। और अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो वहाँ बेहद अनुभवी सरिता देवी के कंधों पर भार रहेगा कि वो बाकी दूसरी मुक्केबाजों को प्रेरित करें। निखत जरीन पर नज़र रहेंगी, बहुत ही युवा मुक्केबाज है। और अब अगर आईपीएल की बात की जाए तो थोड़ी ही देर बाद हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी, और चेन्नई सुपर किंग्स मैजिक 16 नंबर छूने से केवल 2 अंक पीछे है, क्योंकि ये वो नंबर है जो कोई टीम हासिल कर लेती है तो फिर वो सुपर 4 में जगह बना लेती है। एक खास बात यह है कि आज महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आराम कर रहे हैं, खेलते नजर नहीं आएंगे
जी।
इससे हौसले बुलंद होंगे हैदराबाद के, क्योंकि वो पिछले लगातार 3 मुकाबले हारी है, और चेन्नई सुपर किंग्स की कमान अब सुरेश रैना के हाथों में है। देखना यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन किस तरह से टीम को प्रेरित करते हैं। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर ने अभी तक 7 मैचों में 400 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं, और सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी, इसके दम पर उनका ऑस्ट्रेलियाई टीम में सीधा वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुआ। तो थोड़ी देर बाद जब ये दोनों टीमें आमने सामने सामने होगी तो नजर इस बात पर रहेगी कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो आईपीएल में बहुत कम होता है।
कम होता है, और तब तक हम भी इंतजार करेंगे। आपने जिस तरह से गागर में सागर भरा, उसके लिए आदेश कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब समाचारों के लिए समय नहीं है, मैं राजेश जोशी आपसे अनुमति चाहता हूँ। स्टूडियो मैनेजर थे शाकिर आलम। कल सुबह 6:30 बजे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।